आज है 11 अगस्त दिन गुरुवार। स्वागत है आपका नमस्कार भारत में, मैं हूँ सुशीला सिंह। भारत प्रशासित कश्मीर के मुद्दे पर राज्यसभा में हुई लंबी चर्चा। गृहमंत्री ने कहा कोई ताकत कश्मीर को भारत से अलग नहीं कर सकती।
पाकिस्तान से बात होनी चाहिए। अरे बात होगी तो कश्मीर पर बात नहीं होगी डिप्टी चेयरमैन सर, पाक अधिकृत कश्मीर पर बात होगी।
बगदाद के मैटरनिटी यूनिट में आग, 12 नवजात बच्चे झुलसे। बांग्लादेश में कितना सुरक्षित है अल्पसंख्यक समुदाय, और रियो ओलंपिक में मुक्केबाज मनोज कुमार पहुंचे अंतिम 16 में। ये सब थोड़ी देर में, पहले सुन लेते हैं मुख्य समाचार।
बीबीसी समाचार हरिता कांडपाल से। केंद्र सरकार ने सभी विपक्षी दलों की मांग को मानते हुए जम्मू कश्मीर के हालात पर चर्चा के लिए शुक्रवार को सर्वदलीय बैठक बुलाने का फैसला किया है। इसके अलावा मुख्यधारा की पार्टियों, नरमपंथियों और अन्य संस्थानों से भी राजनीतिक चर्चा शुरू करने की फैसला किया गया है। कल राज्यसभा में केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने बताया कि प्रधानमंत्री भी शुक्रवार को सर्वदलीय बैठक में मौजूद रहेंगे। इसके अलावा राजनाथ सिंह ने कहा कि पाकिस्तान से पाक अधिकृत कश्मीर पर बातचीत होगी, न कि कश्मीर पर। अमरीका में राष्ट्रपति दौड़ में शामिल डेमोक्रेटिक उम्मीदवार हिलरी क्लिंटन ने रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप पर हिंसा को बढ़ावा देने का आरोप लगाया है। डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में बयान दिया था कि बंदूक रखने का समर्थन करने वालों को हिलरी क्लिंटन को ये संवैधानिक अधिकार को खत्म करने से रोकना चाहिए। हिलरी क्लिंटन ने कहा कि उन्होंने सीमा पार कर दी है और फिर साबित कर दिया है कि वो राष्ट्रपति बनने के लायक नहीं है।
Words matter, my friends. And if you are running to be president or you are president of the United States,
शब्दों से बहुत फर्क पड़ता है। अगर आप राष्ट्रपति पद की दौड़ में शामिल हैं या राष्ट्रपति हैं, तो आपके शब्दों के बड़े परिणाम हो सकते हैं। कल हमने देखा कि लापरवाह बयानबाजी के सिलसिले में डोनाल्ड ट्रंप ने हद पार कर दी। गोल्ड स्टार परिवार पर क्रूर टिप्पणी, ज्यादा देशों के पास परमाणु हथियार होने चाहिए जैसे बयानों से पता चलता है कि वो हिंसा को बढ़ावा दे रहे हैं। एक एक बयान से पता चलता है कि डोनाल्ड ट्रंप का मिजाज राष्ट्रपति बनने के लायक नहीं है। ये थे हिलरी क्लिंटन के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। सीरिया के अलप्पो शहर में मौजूद चिकित्सा कर्मियों ने कहा है कि विद्रोहियों के कब्जे वाले इलाकों में जहरीली गैस से कम 4 लोगों की मौत हो गई है। माना जा रहा है कि क्लोरीन से भरा बैरल बम वहां गिराया गया है। सीरियाई सरकार और विद्रोही गुट पहले ही रासायनिक हथियारों के इस्तेमाल से इनकार कर चुके हैं। रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि सीरिया में उसके सैनिक दस्ते अलप्पो शहर में 3 घंटे के लिए हमला नहीं करेंगे, जिससे शहर में फंसे लोगों के लिए मानवीय मदद पहुंचाई जा सके। संयुक्त राष्ट्र के एक वरिष्ठ अधिकारी स्टीफन ओब्रायन ने कहा है कि अलप्पो में सहायता पहुंचाने के लिए कम से कम 48 घंटों का वक्त चाहिए। अमेरिका के समर्थन वाले लीबियाई लड़ाकों ने सिर्त में चरमपंथी संगठन इस्लामिक स्टेट के मुख्यालय पर नियंत्रण का दावा किया है। लीबिया की संयुक्त राष्ट्र के समर्थन वाली सरकार के सुरक्षा बलों के प्रवक्ता ने कहा है कि आईएस के मुख्यालय पर उनका कब्जा है। फरवरी 2015 से सिर्त शहर आईएस का गढ़ बना हुआ था। बीबीसी समाचार।
आप सुन रहे हैं नमस्कार भारत लाइव रेडियो bbchindi.com और अपने मोबाइल पर सुशीला सिंह के साथ। भारत प्रशासित कश्मीर में हिजबुल मुजाहिदीन कमांडर बुरहान वानी की मौत के बाद भड़की हिंसा के बाद जहां अस्थिरता का माहौल है, वहीं दिल्ली में संसद के ऊपरी सदन राज्यसभा में कल कश्मीर के मुद्दे पर लंबी बहस हुई। बहस पर चर्चा का जवाब देने आए गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि कोई भी ताकत कश्मीर को भारत से अलग नहीं कर सकती। साथ ही उन्होंने जनमत संग्रह की मांग को खारिज करते हुए कहा,
पाकिस्तान से बात होनी चाहिए। अरे बात होगी तो कश्मीर पर बात नहीं होगी डिप्टी चेयरमैन सर, पाक अधिकृत कश्मीर पर बात होगी। कश्मीर पर बात नहीं, बात करने का कोई सवाल ही नहीं।
वहीं गृहमंत्री ने कहा कि 12 तारीख को इस मुद्दे पर एक सर्वदलीय बैठक बुलाई जाएगी जिसमें प्रधानमंत्री भी मौजूद रहेंगे। सरकार ने इस बात को स्वीकार किया कि राज्य में लोगों से संवाद की जरूरत है और राज्यसभा में सर्वसम्मति से कश्मीर पर एक प्रस्ताव भी पारित किया गया जिसमें कहा गया कि वहां के लोगों खासकर युवाओं के साथ विश्वास बहाली के सभी कदम उठाए जाएंगे। हमारे सहयोगी निखिल रंजन ने श्रीनगर में मौजूद वरिष्ठ पत्रकार शुजात बुखारी से पूछा कि संसद में चर्चा के बाद सरकार के इस रुख का वो क्या असर देखते हैं।
जहाँ तक संसद में कश्मीर पर चर्चा का ताल्लुक है, मैं समझता हूँ कि ये ठीक बात है, चर्चा हुई और बड़ी देर तक चर्चा हुई और उसमें बहुत सारे लोगों ने बात की और बल्कि उन्होंने अफसोस का इजहार भी किया और 33 दिन से जो सिचुएशन यहाँ स्थिति चल रही है उस पर उन्होंने नाराजगी जताई। ये ठीक है कि पार्लियामेंट में कश्मीर डिस्कस हुआ, लेकिन उससे उसके साथ साथ मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट की तरफ से कोई खास तब्दीली नहीं है। उनके जो बयान आए हैं पिछले दिनों से, खासतौर से जब प्रधानमंत्री ने कल मध्य प्रदेश से बात की कश्मीर के बारे में और राजनाथ जी ने इससे पहले भी बात की है, उसमें कोई बदलाव नहीं लग रहा है। और बल्कि आज गृहमंत्री ने ये भी कहा कि इसको थोड़ा बहुत उन्होंने चावल और खांड और गैस के साथ जोड़ा इस स्थिति को। मैं समझता हूँ कि वो थोड़ी ज्यादती है क्योंकि एक इंसानी मसला है और 60 के करीब लोग मारे जा चुके हैं, हजारों की तादाद में लोग घायल हुए हैं। मुझे लगता है कि ज्यादा पॉलिटिकल मैसेज नहीं निकला है इससे, लेकिन एक चीज है कि कश्मीर को डिस्कस किया गया पार्लियामेंट में।
मैं कल भी बात कर रहा था कुछ दूसरे लोगों से और मैं आज फिर आपसे ये सवाल पूछ रहा हूँ कि इस वक्त भारत सरकार को क्या करना चाहिए जिससे कि जो अशांति बढ़ रही है या जो अशांति फैली हुई है वो जल्द से जल्द रुक सके।
देखिए, मैं समझता हूँ कि भारत को क्या करना चाहिए, इससे पहले हमें इस सवाल पे गौर करना बहुत जरूरी है कि कश्मीर के हवाले से जो भारत की जो क्रेडिबिलिटी है, जो उनका व्यवहार रहा है कश्मीर की इस सियासी राजनीतिक कुत्ती को सुलझाने के हवाले से, वो जीरो है। क्योंकि जैसा हमने देखा है 2010 में भी यहाँ विवाद चल रहा था, उसके बाद गवर्नमेंट ने राबतेकार नियुक्त किए, उन्होंने रिपोर्ट दी, उस रिपोर्ट को उसकी तरफ किसी ने देखा भी नहीं। उससे पहले भी प्राइम मिनिस्टर्स वर्किंग ग्रुप बने थे, 5 ग्रुप बने थे, उन्होंने अपने सिफारिशात दी थी, उनको भी कोई अमलाया नहीं गया। या उससे पहले भी वादे किए गए हैं बहुत, न सिर्फ आज बल्कि 1947 से लेकर आज तक, तो इसी वादे को पूरा नहीं किया गया। तो उस एतबार से अगर देखा जाए तो अगर कुछ भी होगा, आज ऑल पार्टी डेलीगेशन भी आएगा, बात करेंगे, लेकिन लोगों को आप कैसे ये यकीन देंगे कि आज जो बात होगी वो मुख्तलिफ होगी और वो मसले को हल करने के लिए बात होगी।
जो लोग पत्थर फेंक रहे हैं या जो आंदोलन कर रहे हैं उससे भी तो बात आगे नहीं बढ़ रही है, उससे भी तो बात अटकी ही हुई है।
देखिए, मैं समझता हूँ कि ये सिचुएशन जो, ये स्थिति जो आज है, ये कैसे पैदा हुई, ये तो पैदा हुई उन्हीं चीजों से जिनका मैंने अभी जिक्र किया कि जो वादे किए गए हैं लोगों के साथ वो उन वादों को पूरा नहीं किया गया। इसीलिए आज हम एक फ्रस्ट्रेशन का माहौल देख रहे हैं। चौथी जनरेशन जो है, पूरी जनरेशन इसके साथ जुड़ी हुई है और उनमें गम गुस्सा है और इस स्थिति को लेके, इस सिचुएशन को लेके कि कश्मीर के मसले की तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तो जब तक मैं समझता हूं कि इस सियासी मसले की तरफ ध्यान नहीं दिया जाएगा, यहां कोई फर्क नहीं होगा।
कश्मीर समस्या का सियासी समाधान जरूरी, ये कहना है वरिष्ठ पत्रकार शुजात बुखारी का। जैसा कि श्रोताओं आप जानते हैं, पिछले एक महीने से कश्मीर में कर्फ्यू जारी है और इसी पर आधारित बीबीसी हिंदी सेवा एक नई श्रृंखला की शुरुआत कर रहा है। इस श्रृंखला में आज जाने माने लेखक निदा नवाज बता रहे हैं कर्फ्यू के दौरान कश्मीर के लोगों की सुबह शाम और रातें कैसे कट रही हैं।
सूरज आज भी मेरी खिड़की से झांक रहा है, लेकिन आज मुझे उसके साथ कोई दिलचस्पी नहीं, कोई यारी नहीं। पिछले कुछ दिनों से मुझे लग रहा है कि जैसे ये मुझे चिढ़ाने की कोशिश कर रहा है। ये दिन भर मेरी कश्मीर घाटी का चक्कर लगा के आता है और मैं अपने इस कमरे में पिछले लगभग एक महीने से कैद हूँ। अक्सर सोचता हूँ कि मुझे किस अपराध में ये कर्फ्यू नाम की कैद की सज़ा दी गई है। मैं तो एक आम कश्मीरी हूँ, मैं न फौजी हूँ और न ही जहादी। मैंने न कभी प्रदर्शन ही किया है और न ही कभी पत्थरबाजी की है। फिर भी मेरा फ़ोन लगभग एक महीने से क्यों बंद किया गया है, मेरा इंटरनेट क्यों बंद किया गया है और मेरा केबल नेटवर्क क्यों नहीं चल रहा है, और ये सूरज, इसको तो कोई कर्फ्यू की पाबंदी ही नहीं, इस पर कोई पत्थर भी नहीं फेंक सकता और न ही कोई गोली या पैलेट गन से इसको मार सकता है। मैं तो कर्फ्यू की वजह से अपने ही आंगन में आकर इस सूरज को अपनी भरपूर निगाहों से भी नहीं देख सकता। हर एक कश्मीरी की ही तरह मैं भी दिन का आरंभ दूध वाली नमकीन चाय से करता आ रहा हूँ। पिछले लगभग एक महीने से बाजार बंद हैं, दूध कहाँ से मिलेगा? नमकीन चाय का काला काढ़ा पी पी कर अब मेरा दिमाग भी खराब होने लगा है। पिछले महीने की 12 तारीख से छोटे बेटे आशु की यूनिवर्सिटी परीक्षाएं आरंभ होने जा रही थीं। कितने चाव से उनकी प्रतीक्षा कर रहा था और कह रहा था कि डैडी, इस वर्ष मैंने पूरी तैयारी की है, हालात भी ठीक रहे हैं, अब की बार अच्छे मार्क्स आएंगे। और फिर अचानक, जैसे कश्मीर के पुर रौनक बाजारों, स्कूल जाते नन्हे मुन्ने बच्चों और मुस्कुराते चेहरों को किसी की नज़र लग गई। एक बार फिर प्रदर्शन, पत्थरबाजी, कर्फ्यू और हड़तालों का अशुभ मुहूर्त आरंभ हुआ। अब कुछ नहीं मालूम बेटे की परीक्षाएं होंगी भी या नहीं। उसको श्राप सा लग गया है, अपने कमरे में अकेला बैठा रहता है, गुमसुम, किसी से बात तक नहीं करता। मैं कुछ कहता हूं तो गुस्सा करता है, सरकार को बुरा भला कहता है, जहाजियों को बुरा भला कहता है और गुस्से से कहता है, डैडी मेरे एग्ज़ाम्स का क्या होगा, कहीं अब की बार भी एक साल का सेमिस्टर डेढ़ साल का ना हो जाए। फिर रोना शुरू करता है। मेरा वो बेटा जो फुर से मोटर बाइसिकल निकाल कर पूरा शहर घूम आता था, दोस्तों के साथ हंसता खेलता था, मुसलसल कर्फ्यू की वजह से उसकी हालत अब देखी नहीं जाती। घर में तंग आकर कभी कभी सड़क तक निकलने की ज़िद भी करता है, मगर हम मियाँ बीवी दिन भर अपने बच्चों की पहरादारी करते रहते हैं। क्या भरोसा सड़क पर निकलकर पत्थरबाजों के पत्थर का निशाना भी तो बन सकते हैं, या फिर फौजियों की गोलियों या पैलेट गन्स का निशाना भी। बीवी भी परेशान है, सब्जी के नाम पर भेड़ बकरियों की तरह एक महीने से खाली साग खाते आ रहे हैं जो किचन गार्डन में लगाया था। घर पर रखा आटा और चावल अब लगभग ख़त्म हो चुका है। सोचता हूँ कर्फ्यू इसी तरह चलता रहा तो क्या करूँगा, बच्चों को क्या खिलाऊँगा, पूरा परिवार डिप्रेशन का शिकार हो चुका है। या अल्लाह, मेरी इस कश्मीर घाटी के वो शांति के दिन कब फिर से लौट के आएंगे।
ये थी भारत प्रशासित कश्मीर से जाने माने लेखक निदा नवाज की आप बीती। भारत की प्रमुख जांच एजेंसी NIA ने दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कथित पाकिस्तानी चरमपंथी बलवान अली का एक वीडियो दिखाया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में NIA के महानिरीक्षक संजीव सिंह ने बताया कि चरमपंथी संगठन लश्कर-ए-तैयबा ने बलवान अली जैसे लोगों की को भीड़ में मिलकर सुरक्षा बलों पर हमला करने के लिए भेजा है। NIA के मुताबिक बलवान सिंह 25 जुलाई को भारी हथियारों के साथ गिरफ्तार हुआ। पूरा ब्यौरा सुनिए निखिल रंजन से।
भारत में चरमपंथी गतिविधियों की जांच करने वाली प्रमुख एजेंसी NIA ने बुधवार को कथित पाकिस्तानी चरमपंथी बहादुर अली से पूछताछ का एक वीडियो जारी किया और बताया कि वो लश्कर-ए-तैयबा का सदस्य है जिसे भारत में अशांति फैलाने के लिए भेजा गया। इस वीडियो में बहादुर अली ने स्वीकार किया है कि वो पाकिस्तान के रायविंड का रहने वाला है।
मैं 2009
NIA के महानिरीक्षक संजीव सिंह ने दावा किया कि हिजबुल कमांडर बुरहान वानी की मौत के बाद अली और उनके साथियों को सीमा पार से निर्देश दिए गए थे कि वे सभी भारत प्रशासित कश्मीर जाएं और जनता में घुल मिलकर अशांति फैलाएं। संजीव सिंह ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा,
लश्कर-ए-तैयबा विद द हेल्प ऑफ पाकिस्तानी फोर्सेज लश्कर ए तैयबा सीमा पर तैनात पाकिस्तानी सेना की मदद से भारत में भारी हथियारों से लैस चरमपंथियों की घुसपैठ करा रहा है। इन लोगों को भारत में स्थानीय लोगों के साथ घुल मिलकर अशांति फैलाने का निर्देश है, साथ ही पुलिस और सुरक्षा बलों पर हमला करने का भी। बहादुर अली ऐसे ही एक गुट का सदस्य था जिन्हें कश्मीर की मौजूदा स्थिति का फायदा उठाने और भीड़ में शामिल होकर हथगोले फेंकने के लिए भेजा गया।
एनआईए ने इस कथित चरमपंथी का वीडियो जारी करते हुए बताया कि जमात दावा ने 2008-09 में बहादुर अली को भर्ती किया था। बहादुर अली को मिलिट्री ट्रेनिंग भी दी गई थी। एनआईए का दावा है कि बहादुर अली के पास से जो हथियार, संचार के उपकरण और नक्शे मिले हैं उससे भी उसके चरमपंथी होने की पुष्टि होती है। एनआईए के आईजी ने कहा कि बहादुर अली को दी गई हथियारों की ट्रेनिंग से सैन्य विशेषज्ञों की भूमिका भी जाहिर होती है। एनआईए के मुताबिक बहादुर अली को 25 जुलाई को गिरफ्तार किया गया। कश्मीर में बुरहान वानी की मौत के बाद से ही भारी अशांति फैली है और इस दौरान आंदोलन कर रहे लोगों के साथ पुलिस की झड़प में करीब 60 लोगों की मौत हुई है। इन झड़पों में आम लोगों के साथ ही हजारों पुलिसकर्मी और सुरक्षा बल के जवान भी घायल हुए हैं।
माफ कीजिएगा, इस चरमपंथी का नाम बलवान अली नहीं बल्कि बहादुर अली है।
नमस्कार भारत। शॉर्टवेव 31, 25 और 19 मीटर बैंड यानी 9835, 9915, 11995 और 15510 किलोहर्ट्ज़ व मीडियम वेव 1413 किलोहर्ट्ज़ पर।
आप सुन रहे हैं नमस्कार भारत, सुशीला सिंह के साथ। इराक के स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि बगदाद के बड़े अस्पतालों में से एक मैटरनिटी विभाग में लगी आग में 12 नवजात बच्चे झुलसकर मर गए हैं। मंत्रालय के अनुसार 8 बच्चों और 29 महिलाओं को बचा लिया गया है और दमकल कर्मचारियों को आग बुझाने में 3 घंटे लगे। यरमुक अस्पताल बगदाद के पश्चिमी हिस्से में है और प्रारंभिक जाँच में इलेक्ट्रिक गड़बड़ी को आग लगने की वजह बताया जा रहा है। पूरे ब्यौरे के साथ हरिता कांडपाल।
इराक की राजधानी बगदाद के एक अस्पताल के मैटरनिटी वार्ड में जहां नवजात बच्चों की किलकारियों से माँ बाप के चेहरों पर मुस्कान खिल उठी थी, उसी मैटरनिटी वार्ड में कल लगी भयंकर आग से 12 शिशुओं की मौत हो गई और उसके बाद मायूसी छाई हुई है। बगदाद के सबसे बड़े अस्पतालों में से एक यारमुक अस्पताल के मैटरनिटी वार्ड में समय से पहले जन्म लेने वाले शिशुओं को रखा जाता है। वहां आग लग गई थी जिसे बुझाने में 3 घंटे से ज्यादा का समय लग गया, लेकिन जब तक आग बुझाई जाती तब तक 12 शिशु बुरी तरह झुलस चुके थे। अपने नन्हे बच्चों को ढूंढते कई माता पिता अस्पताल में अपनी आंखों से आंसू नहीं रोक पा रहे थे। ऐसी ही एक माँ शाइमा हुसैन ने उस वक्त को याद किया जब उन्होंने अपने छोटे से बच्चे का शव देखा। मैंने पीड़ितों को देखा, मैंने जले हुए शव देखे, वो बहुत भयानक दृश्य था। मेरे लिए बच्चे को जन्म देना बहुत मुश्किल था। इलाज के बाद मेरा बच्चा हुआ था। इतना सब कुछ करने के बाद मुझे जला हुआ शव मिला। मरने वाले शिशु वो थे जो अपनी माँ के गर्भ में पूरे 9 महीने रहने से पहले ही जन्म ले चुके थे। कोई एक हफ्ता पहले तो कोई 4 दिन पहले ही दुनिया में आया था। अपने जुड़वा बच्चों को ढूंढ रहे हसन उमर परेशान हैं कि अपनी पत्नी को क्या जवाब दें। मेरे जुड़वा बच्चे कहाँ हैं? एक लड़का और एक लड़की, मुझे नहीं पता कि वो जिंदा हैं या नहीं। मुझे बताया गया कि 7 बच्चों को सुरक्षित निकालकर इस्कान अस्पताल भेजा गया है। मैं वहाँ गया लेकिन वहाँ नहीं मिले। अब कहाँ मिलेंगे वो? मेडिकल सिटी में उन्हें डीएनए टेस्ट के लिए ले जाया गया हो सकता है। परिणाम के लिए 20 दिन तक इंतजार करना होगा। उनकी माँ का सिजेरियन हुआ है और मैं उसे क्या बताऊँ, मुझे कुछ पता नहीं है। जिन बच्चों ने अभी ठीक से आंख भी नहीं खोली वो अस्पताल की आग में झुलस गए। इतनी बड़ी त्रासदी को झेल रहे माँ बाप के लिए प्रशासन की मदद न मिल पाना एक और बड़ी परेशानी है। एक और माँ अली ने ये बताया। मैंने अस्पताल के कर्मचारियों से अपने बच्चों के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि मुझे वो शव घर में मिल सकता है। मैं वहाँ गई, मेरे समय से पहले जन्मे बच्चे का शव मुझे वहाँ मिला। वो बुरी तरह जल गया था। शवों को बक्सों में यूं रखा गया था जैसे स्पॉन्ज का टुकड़ा हो। मैं अपने बच्चे को पहचान भी नहीं सकी थी। माना जा रहा है कि इलेक्ट्रिकल गड़बड़ी के कारण यहां आग लग गई। इराकी स्वास्थ्य मंत्रालय के सलाहकार डॉक्टर अमीर अली मुख्तार ने बताया कि उस वक्त अस्पताल में क्या हुआ था।
The fire took place very quickly. and created a lot of damage.
आग अचानक लग गई और इमारत और प्रीमेच्योर बच्चों को काफी नुकसान हुआ. 12 प्रीमेच्योर बच्चों की मौत हो गई. 20 बच्चे इस वार्ड में थे, इनमें से 8 को बचा लिया गया. इन्हें जल्दी बचाया गया ताकि इन पर धुएं का असर न हो. इराक में बिजली की तारों में आग लगने की घटनाएं कई बार सामने आ चुकी हैं. जिन बच्चों ने अभी तक खुली हवा में ठीक से सांस भी नहीं ली थी, ऐसी नन्ही जान को खोने वाले परिवारजन इसके लिए सरकार को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं. स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली पर लोगों का कहना है कि इराक की सरकार भ्रष्ट है, जिसे जनता की कोई परवाह नहीं है.
आग में झुलसे नवजात बच्चे, जानकारी दे रही थी हरिता कांडपाल. दुनिया भर की नज़रें बांग्लादेश पर इस वजह से भी गड़ी हुई हैं क्योंकि पिछले कई वर्षों से यहाँ पर अल्पसंख्यक समुदाय यानी माइनॉरिटी कम्युनिटी पर हमले लगातार बढ़ते जा रहे हैं. जाहिर है क्योंकि इस समुदाय में मेजॉरिटी हिंदुओं की है, तो भारत में इन तेज़ होते हमलों पर चिंता भी बढ़ी है और कौतूहल भी. कौतूहल इस बात पर ज़्यादा कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यक समुदाय कितना सुरक्षित है. नितिन श्रीवास्तव की ये रिपोर्ट.
बांग्लादेश का राष्ट्रीय मंदिर ढाकेश्वरी. आम धारणा है कि मंदिर से ही जुड़ा है राजधानी ढाका का नाम, लेकिन जिन्हें मंदिर और पूजा पाठ को संभालना है उनके चेहरे पर तनाव की झलक है. ढाकेश्वरी देवी मंदिर के पुजारी विजय कृष्ण गोस्वामी को सुनिए, जिनकी दो पुश्तें बांग्लादेश में रह रही हैं.
इस देश में जो जंगी उत्थान है, इसलिए हर आदमी ये आतंक रहते हैं हर टाइम.
बांग्लादेश की 16 करोड़ आबादी से भी ज्यादा में अल्पसंख्यक करीब 9% हैं और ये समुदाय फिलहाल खौफ में दिखता है. इस साल जून महीने में ही 4 हिंदुओं की हत्या हुई है. सिलसिला पिछले 3 वर्षों से जारी है. कहीं बौद्ध भिक्षु निशाना बने हैं तो कहीं ईसाई समुदाय के लोग.
देश के जाने माने मानवाधिकार कार्यकर्ता और अल्पसंख्यक समुदाय परिषद के महासचिव राणा दास गुप्ता.
इन डिफरेंट एरियाज आउट ऑफ फियर
डरे हुए पुजारी पहनावा बदल रहे हैं. धोती पहनना छोड़कर पैंट शर्ट में आ चुके हैं. महिलाओं ने चूड़ी पहनना बंद कर दिया है. सरकार ने कदम तो उठाए लेकिन और हो सकते थे.
हम इस वक्त बांग्लादेश के सबसे बड़े गुरुद्वारे के सामने हैं, ढाका के बीचों बीच. ये गुरुद्वारा पहले यहाँ पर एक गेट होता था, अब ये मजबूत चद्दर वाला पिछले कुछ महीनों में एक नया गेट आ गया है. मुझे बताया गया कि यहाँ पर अब काफ़ी तलाशी और बिना जाँच पड़ताल के अंदर नहीं जाने देते. काफ़ी अच्छा खूबसूरत कैंपस है. मुझे बताया गया है कि ये पहले 65 एकड़ में था और बांग्लादेश में करीब 1000 से ज़्यादा सिख समुदाय के लोग हैं.
इस गुरु नानक शाही गुरुद्वारे के ग्रंथी वजीर सिंह इन दिनों काफ़ी भयभीत दिखते हैं.
वो अपनी नौकरी पर तो बिजनेस करने वास्ते आप आए हैं और अपनी फैमिली को पिछा हटा दिया है माहौल के बिगड़ने के कारण.
सच ये भी है कि अपनी जान गंवाने वालों में बहुसंख्यक यानी मुस्लिम समुदाय के लोग भी हैं. इन लोगों ने खुलकर कट्टरवादिता के खिलाफ आवाज उठाई थी और इन्हें मारने का दावा करने वाले कुछ लोगों का कथित ताल्लुक इस्लामिक चरमपंथ से बताया गया है.
ढाका विश्वविद्यालय के प्रोफेसर आसिफ नजरुल बताते हैं,
सिंस द इंडिपेंडेंस ऑफ बांग्लादेश इफ यू पर्टिकुलरली टॉक अबाउट द हिंदी कम्युनिटी पीपल दे आर बीइंग डिस्प्लेस्ड.
बांग्लादेश की आजादी के बाद से ही हिंदुओं का विस्थापन हुआ, ये सही है, लेकिन मुद्दे की बात यह है कि वे ही नहीं, जितने भी लोग आर्थिक स्तर पर कमजोर तबके से थे सभी ने इसे झेला है, धर्म चाहे जो भी हो.
उधर बांग्लादेश सरकार लगातार दावा करती रही है कि सभी अल्पसंख्यक सुरक्षित हैं.
बांग्लादेश के सूचना मंत्री हसन उलक हिनू,
इन बांग्लादेश एट द ग्रासरूट लेवल देयर इज नो कम्युनिटी क्लैश.
सभी धर्म मिलजुल कर रहते हैं. बांग्लादेश में 22,000 हिंदू मंदिर हैं और हमने पूरी कोशिश की है उन्हें सुरक्षित रखने की, लेकिन चरमपंथी अल्पसंख्यकों को निशाना इसलिए बना रहे हैं जिससे सरकार पर दबाव बने और उसकी बदनामी हो.
तमाम भरोसों के बावजूद जद्दोजहद उनके लिए है जिन्हें निशाना बनाए गए स्थलों पर दिन रात अपना काम पूरा करना रहता है. नितिन श्रीवास्तव, BBC, ढाका.
और अब समय है समाचार पत्रों की समीक्षा का. हरिता कांडपाल समाचार पत्रों के साथ स्टूडियो आ चुकी है. हरिता
जी. सुशीला, आज सबसे पहले एक बड़ी अच्छी खबर से शुरुआत करते हैं. हिंदुस्तान टाइम्स ने लिखा है कि हाल ही में दुबई में विमान की क्रैश लैंडिंग में बाल बाल बचे केरल के अहमद अब्दुल खादर दुनिया के बड़े ही भाग्यशाली व्यक्ति के तौर पर उभरे हैं। 62 साल के खादर ने कहा है कि वो सोच रहे थे कि उनकी ज़िंदगी विमान क्रैश में बच गई और इसके लिए वो खुदा का शुक्रिया अदा कर रहे थे, लेकिन उनकी ज़िंदगी में एक नया तोहफा उन्हें तब मिला जब मंगलवार को उनके पास एक फ़ोन आया। वैसे तो उन्हें लगा कि किसी रिश्तेदार ने उनका हाल जानने के लिए फ़ोन किया होगा, लेकिन वो फ़ोन दुबई से था और उन्हें बताया गया कि उन्होंने इनाम में $10,00,000 जीते हैं, यानी कि करीब 6.5 करोड़ रुपए जीते हैं। और वो काफ़ी खुश हैं कि हाल ही में उनकी ज़िंदगी एक भयानक हादसे में बच गई और अब उन्हें करोड़ों का इनाम मिला है। इसके अलावा एक और खबर जिस पर सबकी नज़र जानी चाहिए, इंडियन एक्सप्रेस के पहले पन्ने पर छपी है ये खबर कि डॉक्टर जाकिर नायक, जो कि एक विवादित इस्लामिक प्रचारक हैं, मध्य पूर्व एशिया के देशों से 50 से 60 करोड़ रुपए की रकम उनके परिवारजनों के अकाउंट में डाली गई है और इस रकम को लेकर अब जांच शुरू हो गई है। पुलिस के सूत्रों ने बताया है कि ये अकाउंट जाकिर नायक की पत्नी, बच्चों और उनके रिश्तेदारों के नाम है। और अखबार के मुताबिक मुंबई पुलिस ने 4 शेल कंपनियों का भी पता लगाया जिनका संबंध नाइक से और क्यों इन कंपनियों को बनाया गया, इसके जांच शुरू हो गई है। और टाइम्स ऑफ इंडिया ने इसी खबर पर लिखा है कि पुलिस ने यह कहा कि 3 साल के अंदर जाकिर नाइक को विदेश से करीब 60 करोड़ रुपए मिले हैं। इसके अलावा TOI यानी कि टाइम्स ऑफ इंडिया ने एक खबर छापी कि लश्कर ए तैयबा कश्मीर में विरोध प्रदर्शन को भड़काने के लिए एक कमांड सेंटर Alpha 3 का इस्तेमाल कर रहे थे और इसे पाकिस्तान सेना से मदद मिल रही थी। इसके अलावा बहादुर अली, जिस चरमपंथी की हमने भी बात की, उस पर टाइम्स ऑफ इंडिया ने लिखा है कि 12 मिनट का एक वीडियो जारी किया गया जिसमें उसे कबूल किया है कि पाकिस्तान की सेना लश्कर को कई हाईटेक इक्विपमेंट देती है और कई तरह का समर्थन कश्मीर में मुश्किलें पैदा करने के लिए देती है। इसके अलावा एक खबर जिसका मैं यहाँ पे जिक्र कर रही हूँ, द पायनियर ने लिखा है कि इरम शर्मिला, जिन्होंने हाल ही में कल ही मणिपुर में इन्होंने अपना अनशन तोड़ा है 16 साल के बाद, वो अचानक जैसे कि अकेली पड़ गई हैं और उनका साथ देने वाले जो सेव शर्मिला ग्रुप और अन्य कार्यकर्ता थे, उन्होंने उनसे दूरी बना ली है। यहाँ तक कि ये भी लिखा है कि उनके परिवार, उनके करीबी मित्रों और उनके पड़ोसियों ने भी उनसे जो है दूरी बना ली और मंगलवार को जब उन्होंने अनशन तोड़ा तो उनसे किसी ने हाथ भी नहीं मिलाया। यहाँ तक कि कुछ लोगों ने तो स्थानीय स्तर पर मंगलवार रात को उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी किया है। कई लोग पसंद नहीं कर रहे हैं कि उन्होंने
अफसर के खिलाफ जो अभियान चलाया हुआ था उसे क्यों खत्म कर दिया, यानी भूख हड़ताल को क्यों खत्म कर दिया। जी, समाचार पत्रों की समीक्षा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद हरिता। और अब बात रियो ओलंपिक की। रियो अपडेट। सीधे चलते हैं रियो खेल पत्रकार नॉरिस प्रीतम के पास। नॉरिस, ये बताइए कि दीपिका कुमारी जो है तीरंदाज, वो प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है, एक अच्छी खबर है?
बहुत जबरदस्त खबर है, स्पेशली इस वक्त जब सवेरे से बारिश थी और बड़ा ग्लूमी वेदर था, उस बीच जीतू राय पहले ही बाहर हो चुके थे, क्वालिफाई नहीं करे थे, और जब दीपिका की बारी आई और जब उन्होंने कम्पीट करना शुरू करा, तेज बारिश थी आर्चरी ग्राउंड में और एक दफा को तो लग रहा था कि शायद इवेंट स्थगित हो जाएगी, लेकिन बाद में जब वो उतरी मैदान में उन्होंने बहुत शानदार प्रदर्शन करा, उन्होंने भी और बम्बेला देवी दोनों ने प्री क्वार्टर फाइनल में करा और अपने जो लंदन में इसी तरह के वेदर से वो बाहर हो गई थी, एक तरह से कहना चाहिए कि उसका बदला उतारा। और उन्होंने बहुत अच्छी जॉर्जिया की और इटली की जो तीरंदाज थे, दोनों बहुत ही अच्छे तीरंदाज थे, उनको हरा के एक सनसनी फैला दी। कोच धर्मेंद्र तिवारी का कहना है कि बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस है जो हमेशा याद रखी जाएगी।
जी, और मुक्केबाज मनोज कुमार भी अंतिम 16 में पहुंच गए हैं।
जी, और उनका सबसे अच्छी बात है, उन्होंने जो लंदन ओलंपिक के ब्रॉन्ज मेडलिस्ट थे उनको हराया। हालांकि बीच में थोड़ी सी कंट्रोवर्सी शायद ये हो गई थी कि उनके टीम की बनियान के ऊपर इंडिया शायद मिट गया था या गिर गया था, इसमें थोड़ी सी परेशानी रही, लेकिन फिर भी वो सब सही हो गया और वो उन्होंने बहुत शानदार प्रदर्शन करा उन्होंने भी आज।
जी, तो मनोज कुमार मुक्केबाज जो हैं उन्होंने भी बहुत बढ़िया प्रदर्शन किया। ये थे रियो से वरिष्ठ पत्रकार नॉरिस प्रीतम। और अब कार्यक्रम का अंत करने से पहले सुन लेते हैं मुख्य समाचार।
बीबीसी समाचार। केंद्र सरकार ने सभी विपक्षी दलों की मांग को मानते हुए जम्मू कश्मीर के हालात पर चर्चा के लिए शुक्रवार को सर्वदलीय बैठक बुलाने का फैसला किया है। कल राज्यसभा में गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने बताया कि प्रधानमंत्री भी शुक्रवार को इस बैठक में शामिल होंगे। अमरीका में राष्ट्रपति पद की दौड़ में शामिल डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवार हिलरी क्लिंटन ने रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप पर हिंसा को बढ़ावा देने का आरोप लगाया है। बीबीसी समाचार।
मुख्य समाचार सुना रही थी हरिता कांडपाल। इसी के साथ नमस्कार भारत में बस इतना ही। आपसे दोबारा 8 बजे विश्व भारती में फिर होगी मुलाकात। तब तक दीजिए इजाजत।